الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो एक लंबे गैप के बाद हम आज ये क्लासेस का सिलसिला फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना, जही अंकल भी कह रहे थे कि रिवीजन करी उन्होंने भी, करी होगी मेरे ख्याल में पिछली क्लास की, क्योंकि लंबा गैप आ गया। तो मुझे भी थोड़ी रिवीजन करने का इरादा हो रहा था। तो आप लोगों को याद होगा कि आखिरी क्लास में जो हमने शायद मुस्तफ़ा के घर पे हुई थी, है ना, आपके घर पे आखिरी क्लास हुई थी, या तो आपके घर में यसूद अंकल के घर पे हुई थी शायद, खैर जहाँ भी हुई थी। तो वहां पर जो है ना, वो हमने लैपटॉप से बकायदा कुछ पढ़ करके आपको सुनाना शुरू किया था कि ये इतना अच्छा लिखा है कि बहुत दिल चाह के आप लोगों को ना ये सारी तफसीलात हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्ह के बारे में, क्योंकि उनमें स्ट्रेप्सिल्स पे गुजारा चल रहा है आजकल ना, तो मुंह में स्ट्रेप्सिल्स है। तो अशर मुबशरा में से आखिरी 10वें सहाबी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रहता है, उनके बारे में बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। लेकिन शाम के
ठीक
हाथ का जो उनवान था वो हमने खास तौर पर पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें आपको बताया था कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के जमाने में ही उन्होंने फारस यानी पर्शिया की तरफ तो फौजें भेजी ही थी, लेकिन शाम की तरफ भी यानी मगरब की तरफ, वेस्ट की तरफ भी फौजें रवाना करनी शुरू कर दी थी। और उनमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खास बहुत ही मशहूर वहां का शहर है हमस, आज भी ये बड़ा शहर है हमस, वहां पे भेजा। और यजीद बिन अबी सुफियान, जिसपे शायद वो यजीद के बारे में सवाल भी किया था पान भाई ने, तो यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दमिश्क की तरफ भेजा था, और शर्जील रजी अल्लाह तआला अन्हु को उर्दन की तरफ भेजा था। वाकई शर्जील रजी अल्लाह तआला अन्हु को उर्दन की तरफ भेजा था, क्या वाकई? शुरहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु को, शर्जील रजी अल्लाह तआला अन्हु थे ही नहीं तो उनको कैसे भेजते, ठीक है ना? तो वो तो शुरहबील रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनको भेजा था उर्दन की तरफ। ठीक है, क्विज में भी ये सवाल मुझे याद है मैंने लिखा था। अच्छा, और अमर इब्न आस रजी अल्लाह तआला अन्हु को फलस्तीन की तरफ भेजा था, ठीक है, जो कि इस वक्त भी जो फलस्तीन है ना, वही उस जमाने में भी फलस्तीन ही कहलाता था। और ये तो अलग अलग चार सिपे सालार थे, ठीक है, लेकिन ये भी फरमा दिया था कि अगर लश्कर इकट्ठे हो जाए ना, तो ये चारों सिपे सालार उस वक्त नहीं रहेंगे, बल्कि एक सिपे सालार होगा। वो कौन होगा? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है, ये होते हैं ना हमारे यहाँ, क्या होते हैं वो, कोर कमांडर्स, राइट? तो ये चार कोर कमांडर्स थे, लेकिन जब सारे इकट्ठे होते हैं तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है ना, वो फिर लीड करता है, वो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल, तो इस तरह से भेजा, तो ये लोग जो है अरब की सरहद से बाहर निकले। तो वहां पे तो फिर भाई ये रोम जो, ये तो रोमन एम्पायर का इलाका था ना ये शाम, ठीक है, सुपर पावर ऑफ द टाइम उस जमाने की, और इन लोगों के हिसाब से जिसको सुपर पावर ये लोग कहते हैं, तो सुपर पावर था रोम। आज भी रोमन जो है वही दुनिया के वाहिद सुपर पावर आज भी है। अमेरिका जो है ना, ये भी रोमन एम्पायर ही है बेसिकली, ठीक है। तो अब इनकी तो फोर्सेस जो है वो एक से बढ़ करके एक, इनके पास जो है वो कैवलरी थी और आर्टिलरी थी उनके जमाने की, और पता नहीं क्या क्या था। तो इनसे सामना हुआ ना, तो सारी इस्लामी फौजों को फिर यकजा किया अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला ने, इकट्ठा किया और मजीद कुमक मांगी, कुमक यानी एड, मदीना मुनव्वरा में मैसेज भेजा। तो अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला को, जो कि फारिस की तरफ थे, उनको हुक्म किया कि तुम भी यहां पे पहुंचो। तो वो ना छोटी छोटी जगहों को फतह करते हुए रास्ते में इस फौज के साथ आकर के मिल गए। बुसरा फतह किया उन्होंने, फहल फतह किया, अजनादैन फतह किया, और फिर दमिश्क जो कि कैपिटल सिटी हमेशा से शाम का रहा है, तो वो दमिश्क पे आकर के बाकी फौजियों के साथ मिल गए। अब दमिश्क का जो मुहासरा था, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि इसी वक्त जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो गया, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गॉट द खिलाफत, उन्होंने फिर खिलाफत उनको मिल गई, तो उन्होंने इसको मजीद आगे कंटिन्यू किया, वापस नहीं बुला लिया कि वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तो चले गए, अब सारी फौजों को वापस बुला लो, अब हम मदीना मुनव्वरा में ब्रिज बनाएंगे, हैं किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, ठीक है, ये सब नहीं किया उन्होंने, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, और एयरपोर्ट बनाएंगे, और फलाना बनाएंगे, बल्कि दीन इस्लाम एलाए कलिमतुल हक का काम जारी रखेंगे दुनिया के अंदर। तो दमिश्क कैसे फतह हुआ था, थोड़ी बहुत अगर किसी को याद हो इसी तफसील बताई थी जी बराबर।
अपने रोड पे
हाँ, अबू उबैदा रतान जो है ना वो तो तैयार खड़े हुए थे मेन गेट की तरफ गोया के, सही है, और खालिद बिन वलीद रतान जो है ना वो पीछे से वो जो दीवारें होती है ना उनको फलांग करके अपनी स्पेशल फोर्स, उनकी एक खास SSG होती थी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, ये खालिद बिन वलीद रतान के साथ होता था, ये गालिबन 100 लोग होते थे, ठीक है ना, ये स्पेशल कमांडो फोर्स होती थी उनकी, हमेशा उनके साथ रहते थे ये, तो उसी किस्म की कोई फोर्स थी, उसके साथ ये अंदर दाखिल हो गए, और वहां पे उन्होंने जो है ना वो पता करना शुरू कर दिया इलाकों को। इधर से जो है ना जब ये जो दमिश्क का उनका था अमीर ईसाइयों का, तो उसने कहा कि भाई ये तो हम तो इनसे नहीं लड़ सकते, ये तो उसने जो है ना वो सुलो की रिक्वेस्ट डाल दी अबू उबैदा जनरल के पास, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भी ठीक है हम पीस ट्रीटी कर लेते हैं, और पीस के अंदर क्या होता है कि फिर जो है ना वो हम आपको भी काफी लिबर्टी देते हैं और आप हमें कुछ पैसे दे दें, यानी जिजिया वाला जो रूट होता है, ठीक है कि वो टैक्स दे देंगे और मुसलमान जो है वो उनकी हर चीज की हिफाजत करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है ना वहां पे फतूहात भी हो रही थी और यहाँ पे सुलह हो रही थी। अब जो इलाका आप लड़ाई के जरिए से फतह कर लेते हैं ना, तो वहां पर जो है ना फिर वो दूसरी पार्टी की नहीं सुनी जाती, भाई ये आपका इलाका हो गया, आपने फतह कर लिया, ठीक है ना, तो यहां पर तो सुलह की गई थी, यहां पर तो उनके साथ गोया के बराबरी बराबरी का, सुलह में तो फिर बराबरी बराबरी होती है ना, ठीक है, पीस ट्रीटी के अंदर, लेकिन यानी आप समझ रहे हैं कि खालिद बिन वलीद के जो मफतूहा इलाके थे वहां पर तो मुसलमानों को अपर हैंड हासिल था और यहां पर मुसलमानों को इक्वल हैंड हासिल था, लेकिन जब सुलह हो गई तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अपर हैंड को विड्रॉ को छोड़ दिया, ठीक है, और वहां पर भी सुलह की शराइत को अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो अब ये बड़ाई थी ना कि भाई शहर का इतना बड़ा इलाका जो है ये हमारा फतह का इलाका है, यहाँ पे हमें क्या जरूरत है सुलह की शराइत को अप्लाई करने की, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि इक्वल मामला किया। तो यही बहुत सारी बातें थी जिनकी वजह से ईसाई जो है ना जो मुसलमानों के साथ मिलते थे आकर के उनके अंडर रहना शुरू होते थे ना, वो मुसलमानों के साथ बहुत फिर उनका अच्छा ओपिनियन बन जाता था, ठीक है, तो इस तरह से दमिश्क फतह हो गया, फिर उसके बाद फहल का इलाका जो है वो भी पता हुआ था, और हाँ इसके अंदर वो वाली बात थी फहल की फतह के अंदर, कौन सी वाली एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी आप, मैं तो खुद देख करके पढ़ूं लेकिन आप लोगों से आपकी याददाश्त का इम्तिहान ले रहा हूँ, ये तो सही बात नहीं है, लेकिन चले किसी को अगर याद हो फहल के अंदर क्या हुआ था कि
मेरे सामने छुप गए थे नीचे।
नहीं वो फहल में नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर जो है ना वो उनका एक कासिद आया था और उसने आकर के देखा कि भाई यहाँ पे तो अमीर साहब नजर ही नहीं आ रहे, सारे गरीब साहब नजर आ रहे हैं, ठीक है, गरीब गुरबा लोग जो है वो जमीन पे बैठे हुए हैं आप लोगों की तरह, माशाल्लाह हमारे अजीज रहमतुल्लाह फरमाया करते थे मलंगों की तरह है, मलंगा तो मलंग लोग जो है वो ऐसी जमीन पे बैठते हैं, ठीक है, तो सहाबा भी जो है ना वो जमीन पे बैठे हुए थे आराम से, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा अमीर किधर है, ये तो सारे गरीब गरीब गुरबा, तो उन्होंने कहा ये अमीर भी गरीब ही है वो जो गरीब बैठा है ना उधर तो वो भी वही अमीर है हमारा। तो उसने कहा यार ये तो सारे गरीब हैं। तो उसने आगे से फिर एक जबरदस्त किस्म की ना ऑफर दी। उसने कहा कि मैं तुम सबको जो है ना वो दो अशरफिया दूंगा, ठीक है, अशरफिया लो और भागो यहां से, चलो यहां से अपने घर, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम यहाँ पे अशरफियों के लिए आए ही नहीं है, आप हमारी गुर्बत से जो है ना वो कंफ्यूज ना हो जाए, हम यहाँ पर अशरफियों के लिए नहीं आए, ठीक है, यहाँ तो हम या तो माल गनीमत के लिए आए हैं या शहादत के लिए आए हैं, ठीक है ना, वन ऑफ द टू, देर इज नो थर्ड ऑप्शन फॉर अस। तो उसमें मुझे याद आया कि कल बयान में एक अंकल आए हुए थे, डॉक्टर, वो पैथोलॉजी के डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो यहाँ पर ना रियाज इल्म स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। तो मोहम्मद नुमान भाई के अबू लेकर के आए थे उनको। तो पैथोलॉजी की जब बात बात आ जाए तो फिर हमें तो फिर जाहिर है अपने जो उस्ताद साहब जिन्होंने हमारा जी से ताल्लुक बनवाया था, डॉक्टर हुसैन अब्दुल सत्तार, जो शिकागो में रहते हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं वो, तो वो याद आ जाते हैं फिर। तो डॉक्टर हुसैन अब्दुल सत्तार जो हैं तो वो मेडिसिन मेडिकल डॉक्टर बने, और फिर जो है वो हजरत जी ने उनसे कहा कि दिया जाके आलिम में तीन भी बन जाए, ठीक है। तो वो फिर 2.5 साल पाकिस्तान के अंदर एक मदरसे में गए, वहां पे जाकर के आलिम दीन बन करके आए, और आलिम दीन में भी खाली उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी बल्कि अच्छी जो है मुजाहिदा वगैरह भी किया, अपनी तरबियत भी हजरत जी से करवाई। तो फिर उनको फिर नस्बत भी मिली सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की। तो अब वो डॉक्टर भी बड़े जबरदस्त किस्म के बने, लेकिन बिल्कुल ही जो है ना वो मलंग मलंग, ठीक है। तो उनकी एक तस्वीर जो है वो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर ना, वो इंटरनेट के ऊपर सब एक दूसरों को भेजते हैं कि वो जो है ना वो जमीन पे ऐसे करके एक पैर ऊपर करके, जैसे सुन्नत तरीका है ना खाना खाने का, तो वो ऐसे जमीन पे बैठे हुए हैं और यूं करके खा रहे हैं, ठीक है ना, और इतनी लंबी सी दाढ़ी है, और जो है वो जुब्बा भी पहने हुए हैं, और नीचे जो है वो जो वो खाकी रंग की पतलून होती है वो पहने हुए थे जो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे उस वजह से। तो बहरहाल इस तरीके से वो खाना खाते हैं, ठीक है, वो उसकी तस्वीर थी। मैंने तो काफी वक्त उनके साथ गुजारा है। तो काफी बाद में जाकर के फिर उन्होंने एक किताब लिखी, ठीक है, और वो किताब जो उन्होंने लिखी ना वो पैथोलॉजी के ऊपर लिखी, ठीक है, हाउ टू टीच पैथोलॉजी, ये वो किताब है। लेकिन उस किताब के अंदर जो उन्होंने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी है ना, ठीक है, वो कौन सी इस्तेमाल करी है, उन्होंने वो मेथड इस्तेमाल किया है पैथोलॉजी पढ़ाने के लिए जो कि उन्होंने जामिया फरीदिया इस्लामाबाद में सीखा था, इस्लामाबाद के जामिया फरीदिया मदरसे के अंदर जमीन पे बैठ करके सर्फ और नहफ पढ़ते हुए उन्होंने वो मेथडोलॉजी सीखी थी, ठीक है। तो वही उन्होंने फिर उस किताब के अंदर इस्तेमाल करी, और हजरत जी से दुआएं भी हुई थी, मेरे सामने ही मामला हुआ था, हजरत जी का मशवरा भी था, दुआएं भी थी। उस किताब को अल्लाह ताला ने इतनी मकबूलियत दी, इतनी मकबूलियत दी कि इस वक्त दुनिया में कोई शख्स पैथोलॉजिस्ट बन ही नहीं सकता जब तक कि वो उस किताब को ना पढ़े, चाहे मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम, अमरीकी हो या ऑस्ट्रेलियन हो या ब्रिटिश हो या कोई भी हो, उस किताब को पढ़े बगैर आप पैथोलॉजिस्ट बन ही नहीं सकते, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि दुनिया का हर डॉक्टर, चूंकि पैथोलॉजी जो है वो एज अ सब्जेक्ट तो हर डॉक्टर को पढ़नी पड़ती है स्पेशलाइजेशन के लिए, तो फिर आप पैथोलॉजिस्ट बनते हैं ना, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए भी या एमडी बनने के लिए भी आपको पैथोलॉजी का कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ता है ना। तो हर डॉक्टर दुनिया का उस किताब से वाकिफ है कि ये क्या किताब होती है, ना वाकिफ कोई भी डॉक्टर नहीं है दुनिया के अंदर, ये हाल है उस किताब का, ठीक है। तो अब जो है ना वो उस किताब के ऊपर और उनके ऊपर किसी ने जो है ना वो पिछले दोनों एक आर्टिकल लिखा कि बड़ा अच्छा ये ऐसे उन्होंने किताब लिखी और उनकी कामयाबी हुई और जो है वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज उसके अंदर लिखी। तो किसी ने जो है ना फिर वो जो उनके ऊपर किसी ने मजमून लिखा ना ये वाला, तो वो मजमून हमें भी फॉरवर्ड किया, ठीक है। उस मजमून का टाइटल बड़ा अजीब था, क्या था उसका टाइटल बताया किसी को डॉक्टर साहब? उस मजमून का टाइटल बड़ा अजीब था, ठीक है,
आईडिया
हाँ, उसका टाइटल था आइडियल आलिमे दीन। आइडियल आलिमे दीन, आइडियल का मतलब क्या होता है कि हो तो ऐसा, ठीक है ना, आलिमे दीन हो तो ऐसा कैसा कैसा हाँ, असरी तालीमात में भी बहुत आगे निकला हुआ, बहुत कामयाब डॉक्टर, ठीक है ना, बहुत मशहूर दुनिया के अंदर पर्सनालिटी, आलिमे दीन तो ऐसा होना चाहिए। तो जिन्होंने हमें फॉरवर्ड किया ना, वो तो हमने उनको फिर जवाब लिखा कि मेरे दिल में एक बात आई कि अगर ये टाइटल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर इस टाइटल को देखें तो उनके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी, राइट, कि मेरे बताए हुए हिदायत और मेरे लाए हुए उलूम को जिस शख्स ने अपने सीने में, ये हजरत जी के भी यही अल्फाज थे, जिसने अपने सीने में दीनी उलूम को समो लिया, उसको तुम जाहिल समझते हो, उसको तुम बेकार समझते हो, राइट, और उसकी अहमियत अगर तुम्हारे नजदीक बनती भी है, पहले तो उसकी बिल्कुल ही अहमियत नहीं होती थी, उसको तो बिल्कुल ही जाहिल, वो जो हजरत जी के पास एक आए थे ना, हजरत जी फरमाते थे कि एक साहब आए मेरे साथ, मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, तो वो साहब मुफ्ती साहब से कह रहे, लेकिन मुफ्ती साहब आप कुछ पढ़े हुए भी हैं? तो जी ने फरमाया कि मुफ्ती साहब ने जो इतनी किताबें घोल के पी दी, उसको ये जाहिल इंसान बोल रहा है कि आप पढ़े हुए भी हैं, ठीक है ना, यानी वो मुफ्ती साहब को अनपढ़ समझ रहा है और अपने आप को जो है ना वो पढ़ा लिखा समझ रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये होता था, और अब जो है वो दीन की हवाएं जब से चल गई हैं, दाढ़ियां आ गई हैं, टोपियां आ गई हैं, ठीक है ना, तो अब जो है वो मौलवी की कदर तो हो गई है, लेकिन उस मौलवी की जो के कामयाब डॉक्टर भी हो, वरना कदर नहीं है मौलवी की अभी भी, तो कदर तो फिर डॉक्टर ही की हुई ना, कदर मौलवी की तो फिर भी नहीं हुई, और मौलवी की कदर का क्या करना है तुमने, असल में तो दीनी उलूम, असल में तो अल्लाह के दीन, अल्लाह के नबी की कदर होती है ना, राइट, दीन तो यही है ना भाई, अल्लाह का दीन, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की शरीयत, उसकी तो कदर तुम में अभी भी नहीं हुई ना, तुमने दाढ़ियां तो उगा ली है, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अच्छा लग रहा था दाढ़ी उगाना, उगा ली तुमने, तुम्हारी इस दाढ़ी की क्या हैसियत है, ठीक है, तुम्हारी इस टोपी की क्या हैसियत है, कहते ना कि तेरा दिल तो है, हजरत जी फरमाते थे ना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, सही कह रहे, तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो अभी भी बुत से मोहब्बत करता है, तू जो नमाजें पढ़ रहा है तो तेरी नमाजों से तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई दीन तो दीन है, कल भी आपने सुना, आज दोबारा सुन लीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दी, दोबारा भी सुनाएंगे आपको आगे भी, ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला तो दिल को देखते हैं ना, है ना, ये तो अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखते, तुम्हारे अमाल को नहीं देखते, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं, दिल में जो है वो बुत भरा हुआ है तो की फायदा ऐसे दीन का तुम्हें, तो बहरहाल तो वो भी जो है वो कोई आइडियल मौलवी नहीं है, ठीक है, होंगे आइडियल डॉक्टर, और उनका हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने मेहनत जी से जोड़ा, हम तो इस वजह से उनकी कदर करते हैं, इसलिए कि थोड़े के पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखो तो बेवकूफों को समझाने के लिए बात बतानी पड़ती है ना, ताकि शायद मान जाए, ये बेवकूफों के लिए बातें की जाती हैं कि पैथोलॉजी के बड़े कामयाब डॉक्टर हैं और उनकी किताब जो है वो हर को पढ़नी पड़ती है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये अक्लमंदों को ये बात बताने की जरूरत नहीं होती, क्या ख्याल है, जो अक्लमंद होते हैं ना उनको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि इसकी कदर करो क्योंकि बहुत कामयाब पैथोलॉजिस्ट है, जो बेवकूफ होते हैं ना, इडियट्स, राइट, आज भी हमने एआई के बारे में कुछ बातें शेयर करी अंकल्स के साथ, जो इडियट्स होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, उनके लिए ये बातें होती हैं खाली, ठीक है, अल्लाह हमें इडियट बनने से बचाए, क्या ख्याल है, आमीन सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वो पैदा रहता जो है वो भी जमीन पे बैठे हुए थे, तो इसने कहा कि यार ये तो गरीबों की टीम है, इनको तो दो अशरफियों में हम चलता कर देंगे, उन्होंने कहा चलो भाई चलो, हमें तुम्हारी अशरफियां नहीं चाहिए, तो फिर ये अल्लाह ताला ने फिर इनको भी फतह अता फरमा दी। अच्छा फिर उसके बाद फतह है हमस, लड़ाई हुई अबू बैदान ने, ये भी आपको बताया था, इबादुल्लाह, इबादुल्लाह इस्तौजिबू मिन अल्लाह नसर बिस्सब्र फइन अल्लाह मअ अस्साबरीन, एक एक सफ में जाते थे और उनको ये याद दिलाते थे या इबादुल्लाह, क्योंकि जब या के बाद होता है ना, तो फिर वो हालत नसब में चला जाता है और फिर वो इबादुल्लाह नहीं होता, वो इबादल्लाह होता है, ठीक है। लेकिन अक्सर या नहीं बोला जाता तो फिर या के बगैर भी फिर उसको इबादल्लाह बोला जाता है। जी
आपने लास्ट क्लास में बताया था कि इस क्लास में जंगे अभियुक्त के बारे में पढ़ेंगे, जंगे अभियुक्त को परेशान नहीं होता है तो बहुत मिले।
आप तो समझ नहीं हो रहा आ रहे हैं ना जंगे जम्मू के बाद यार, ठीक है। तो हम तो अभी रिवीजन कर रहे हैं पीछे का। तो पता है हमस फिर हुई, हमस की तरफ बढ़े और वहां पर जो है वो वाला जो गार खोदने वाला वाकया था वो हमस के मुहासरे में हुआ था कि उन्होंने नई तदवीर एक इख्तियार करी थी। हदीस क्या बताई थी आपको इस वाले वाकये के तहत? एक हदीस बताई थी कि अबू बैदर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक नई तदबीर ये इख्तियार करी थी कि हमस के बाहर जो है ना वो गार खुदवाए थे और उनके अंदर बहुत सारे सिपाही छुप के बैठ गए थे, ऊपर से कवर कर दिया था और बाकी जो सिपाही थे वो सारे के सारे चले गए, ठीक है। तो जब शहर वाले थे उन्होंने सुबह को जब देखा जी तो फौज चली गई, तो उन्होंने दरवाजे खोले क्योंकि बड़ा लंबा अरसे से जो है वो मुहासरा चल ही रहा था, तो तंग आए हुए थे मुहासरे से यानी उससे। तो वो बाहर निकल आए, दरवाजे खोल दिए, जब जैसे वो बाहर निकले तो गार जो थे ना तो उनमें से सारे सिपाही निकले और उन्होंने हमला कर दिया शहर के अंदर, वो अंदर घुस गए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को एक हदीस बताई थी, वो क्या थी?
सरासर होता है
अलहर्बो खुदा, ठीक है। नबी फरमाया कि जंग जो होती है ना ये तो धोखे का नाम है, ठीक है। तो जंग के अंदर इस तरह का धोखा देना ये जायज होता है, तो इन्होंने यही धोखे वाला ही मामला किया ना कि भाई ऐसे शो किया कि जैसे कि हम लोग चले गए, हालांकि चले गए नहीं थे, ठीक है। जब प्रूस हो जाए या जब फतह हो जाए तो उसके बाद धोखा शोका नहीं होता, ठीक है ना। धोखा ड्यूरिंग द वॉर होता है, नॉट आफ्टर द और बिफोर द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो यरमूक की फैसला कुन जंग इसकी बात शुरू करी थी जो फरहान भाई उसका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। तो यरमूक में फिर ये हुआ था कि रूमियों की मुतवातर हजीमत हो, यानी एक के बाद एक उनको शिकस्त हो ही चली जा रही थी, हो ही चली जा रही थी। तो उसने ना उनके आतिश गैज़ो गजब को बढ़ा दिया था, भड़का दिया था, और हिरकल शहनशाह रोम की दावत पर तमाम अतराफ मुल्क से टड्डी दल, यानी जिस तरह से लोकस्ट का हमला होता है ना, टिड्डियों का हमला होता है, तो इतनी टिड्डियां होती हैं कि आसमानी नजर नहीं आता, ठीक है। तो इसी तरह से जब बहुत बड़ी फौज आ जाए ना तो उसको कहते हैं टिड्डी दल फौज। तो अबू उबैदा बिन जर्रा खान जो है उन्होंने खुद शामी उमरा और रऊसा ने जो बावजूद मजहबी इख्तलाफ के उनके अखलाक के गर्विदा हो गए थे, तो रोमियो ने खुद आकर के अबू उबैदा के उसको इतला दी कि भाई ये हिरकल ने जो है ना इस तरीके से पैगाम भेजे हैं और बहुत बड़ी फौज को वो इकट्ठा कर रहा है। तो उन्होंने अपने जो है ना वो सारे अफसरों को यानी कोर कमांडर्स को जमा किया और उनसे मशवरा किया कि हमें इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करना है। तो ये बात शायद हो चुकी थी पिछले क्लास में कि यजीद बिन अबी सुफियान ने फरमाया कि रज़ा ताना ने कि हम ना औरतों बच्चों को शहर में छोड़ें और बाहर निकल करके इस फौज का मुकाबला करें, औरतों बच्चों को साथ लेके जाएंगे तो फिर उनके भी हिफाजत का ख्याल करना पड़ेगा वगैरह, तो उनको अंदर छोड़ दें और हम लोग बाहर निकल करके हमला करें और खालिद रजान को भी बुला लिया जाए और अमर बिन आस रजान को भी फलस्तीन से बुला लिया जाए। तो इस पर शुराहबील बिन हसन रजान ने कहा कि यजीद ने बहुत इखलास के साथ ये राय तो दी है, लेकिन हम अपनी औरतों और बच्चों को जो है ना वो ईसाइयों के रहमो करम पे छोड़ दें, जो कि बहरहाल है तो ईसाई ना, ठीक है ना, ठीक है वो हमारे इखलास से मुतासिर वगैरह हो गए, लेकिन हम स्टिल वी कैन नॉट ट्रस्ट देम, ठीक है, दे आर नॉट मुस्लिम्स, तो हमें उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो अबू उबैदा बिन जर्रा ने फिर फौरन फरमाया कि अच्छा तो फिर हम ये करते हैं कि सारे ईसाइयों को शहर से निकाल देते हैं, ठीक है, और अपने जाहिर चंद बंदों को तो छोड़ते थे ना, जैसे नबी अलैहिस्सलाम भी जब जिहाद पे जाते थे तो औरतों बच्चों की निगेबानी पे कभी अली रतान को छोड़ रहे हैं तो कभी किसी और सहाबी को छोड़ रहे हैं, ठीक है, दो तीन लोगों को छोड़ देते, इसी तरह हम चंद लोगों को छोड़ दें, ईसाइयों को हम बेदखल कर दें शहर से, ठीक है। तो उनके जहन में ये अल्लाह ताला ने ख्याल डाला, उन्होंने फौरन से ये फरमा दिया, लेकिन फौरन शुरहबील बिन हसन रज़ियल्लाहु ने उठ के कहा कि ए अमीर ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमने जो है ना वो उनसे जिजिया टैक्स लिया हुआ है इस वादे के साथ कि हमने आपकी हिफाजत करनी है, अब हम उनको ऐसे उनके घरों से बेदखल करके बाहर निकाल देंगे तो ये तो हिफाजत ना होगी ना, फिर तो वो पता नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे उनके साथ मामला होगा। तो हम ये अहद की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते, ये वॉर वाली सिचुएशन नहीं है कि हम उनको धोखा दे करके बाहर निकालते, ठीक है ना, ये पीस वाला मामला है। हम इनके साथ जो है ना वो हालत पीस में है, इनके साथ हम ये अहद का नक्स नहीं कर सकते। अबू उबैदा कमांडर इन चीफ है और उन्होंने फिर भी फौरन अपनी गलती तस्लीम कर ली कि हाँ मुझसे गलती हो गई, गलत राय दे दी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपस में और डिस्कशंस हुई तो बिलाखिर ये तय पाया कि जितना पैसा उन लोगों से हमने लिया है ना, पहले हम उनको वापस करें, ठीक है, और हम जो है फिर सारे फोर्सेस वहां से बाहर निकल के जो है ना गोया के उनके हवाले करते हैं सब कुछ वापस, ठीक है, उनका पैसा भी उनको वापस कर दें, जिजिया भी उनको वापस कर दें, और उनसे कह दें कि भाई हमने आपकी हिफाजत जो है ना उसके लिए पैसे लिए थे, अब हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, वी ऑल हैव टू गो आउट एंड फेस द आर्मी ऑफ हिरकल, इस वजह से वापस, ठीक है। तो जो कुछ लाखों की रकम वसूल हुई थी वो सब वापस कर दी, और इसका उनके ऊपर इतना असर हुआ कि वो रोते थे और जोश के साथ कहते थे कि अल्लाह आप लोगों को वापस लेकर के आए, ठीक है ना, हम आपकी गुलामी के लिए खुश हैं, हिरतल जैसे लोगों की गुलामी हमें पसंद नहीं है। हालांकि वो उनके दीन का था और ये जो है वो मुसलमान भी नहीं थे, ये अबू उबैदा के दीन पर नहीं थे। अच्छा, फिर उसके बाद यरमूक का जो मारका हुआ तो उसमें इन्होंने लिखा कि दमिश्क में जब इस्लामी फौजें मुजतमा हो गई तो हजरत अबू उबैदा उन्होंने आगे बढ़कर यरमूक के मैदान में जो कि बड़ा ही मुनासिब जगह थी वहां पे मोर्चे लगाए। इसी इस्ना में अमर बिन आस का पैगाम भी आ गया कि भाई ये जो है ना वो आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो गड़बड़ हो गई है, सही नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बस ये मजबूरी थी, हमें तो पीछे का महाज छोड़ना ही था, क्योंकि भाई आपस में मशवरे के साथ तय पाया है ना। तो अब जो है वो बेशक आपको अगर ये मशवरा नहीं भी अच्छा लग रहा लेकिन स्टिल वी हैव टू गो बाय इट। अच्छा, फिर मुसलमानों के अब ये जो है सारे के सारे बाहर निकल आए, यरमूक के मैदान के ऊपर जमा हो गए ईसाइयों से लड़ने के लिए। तो अब ईसाइयों में भी जो है ना वो कुछ ऐसे लोग थे जिनको के इतनी अकल थी कि यार ये नौ से लड़ना जो है ना वो आसान काम नहीं है, तो बेहतर है कि हम इनसे सुलह ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो सिपे सालार था हामान बाहान उसका नाम था, उसने ना जॉर्ज नामी एक पैगंबर पैगंबर मैसेंजर वो जॉर्ज को जो है ना मुसलमानों के पास भेजा कि भाई वहां से ना तुम किसी मुसलमानों के सफीर को एम्बेसडर को लेकर के आ जाओ, वो हमारे साथ जो है ना पीस एग्रीमेंट को तय कर ले, ठीक है। तो जॉर्ज साहब जब आए तो उस वक्त जो है वो मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका था, नमाज शुरू हुई तो उन्होंने मुसलमानों को जितने खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते देखा ना तो उनका तो दिल ही नरम पड़ गया ना, ठीक है। तो मुसलमानों की मगरिब की नमाज खत्म हुई तो जॉर्ज ने जो है वो अबू उबैदा से कहा कि मुझे आपसे चंद सवाल पूछने हैं। पूछो भाई क्या सवाल पूछने हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो, क्योंकि जॉर्ज ऑब्वियसली क्रिश्चियन था। तो अबू उबैदा उन्होंने सूरह गालिबन मरियम है ना ये, या आप लोग बताएंगे, या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनकुम वला तकूलू अलल्लाह इल्लल हक, सूरह निसा, ठीक है, ये आयत पढ़ी कि अहले किताब तुम अपने दीन में गुलू मत किया करो, ठीक है, कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी थे उनको तुमने खुदा का बेटा बना दिया, ये गुलू करना कहलाता है, एक्सेस कर लेना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अहले किताबी ला तगलू फी दीनकुम वला तकूलू अल्लाह इल्लल हक, अल्लाह के ऊपर सच के अलावा तुम झूठ मत बोला करो। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियमा रसूलुल्लाह व कलिमा, जो मसीह इब्ने मरियम है ना वो तो अल्लाह के रसूल है और अल्लाह का कलिमा है। अल्काहा इला मरियम लयस्तन के फल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाही वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, ठीक है। तो भाई अल्लाह का कलिमा है, अल्लाह के रसूल है, और मसीह इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया था, भाई जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर बाप के बगैर माँ के, तो इनको जो है वो बगैर बाप के पैदा कर दिया, कौन सा मुश्किल काम है अल्लाह ताला के लिए। और ईसा अलैहिस्सलाम ने यानी मसीह इब्ने मरियम उन्होंने और मलाइका मुकर्रबीन को अल्लाह ताला की बंदगी में कोई आर नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, तो तुमने जो है वो उनको अल्लाह ताला का बेटा बना दिया है, और फलाना बना दिया है, फलाना बना दिया है। तो जॉर्ज ने जब इन आयतों का तर्जुमा सुना तो पुकार उठा कि बेशक ईसा अलैहिस्सलाम के यही औसाफ है, और दर हकीकत तुम्हारे पैगंबर ने बिल्कुल सच कहा है। ठीक है, तो ये कहकर वो मुसलमान हो गया जॉर्ज, और उसने कहा कि मैं अब वापस नहीं जाना चाहता वहां पर। ठीक है, तो अबू बैदा रतानानों ने उसको कन्विंस किया कि देखो अभी अगर तुम वापस नहीं जाओगे ना तो वो ये समझेंगे कि हमने एक सफीर को, तुम तो वहां के कासिद बनकर के आए ना, तो हमने उसको या तो कत्ल कर दिया है या हमने उसको कैद कर लिया है, जो कि प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ठीक है, डिप्लोमेटिक रूल्स तो पहले भी थे, आज भी सो कॉल्ड होते हैं, तो ये तो उसके खिलाफ है। तो इस वजह से जो है ना, तुम ऐसा करो, तुम वापस जाओ, किसी को बताना नहीं कि तुम मुसलमान हो गए हो। कल जब हमारा बंदा वहां पर आएगा ना, तो तुम उसके साथ फिर वापस आ जाना, तो सब देख सकेंगे कि तुम अपनी मर्जी से वापस जा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक एम्बेसडर तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं लेकर के आ सकता। तुम अगर तुम उसके साथ वापस आओगे ना, तो तुम अपनी मर्जी से वापस आओगे, एंड एवरीवन विल बी एबल टू सी दैट, विटनेस दैट। ठीक है, तो इस तरीके से फिर अगले दिन जो है वो हजरत खालिद बिन वलीद रतान सफीर बना के भेजे गए, लेकिन बातचीत का कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मुसलमान जो है वो चले जाएं, और मुसलमान चाहते थे कि भाई या तो लड़ाई, ठीक है, या फिर या तो मुसलमान हो जाओ या जिजिया देने के लिए तैयार हो, है ना। हम यहाँ पे वापस जाने के लिए नहीं आए, हमारा जो पाथ है ना वो या तो फॉरवर्ड है या अपवर्ड है। नहीं, हमारे पास दो रास्ते हैं, या फॉरवर्ड या अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या? शहादत। ठीक है ना, या ये कि हमला करना है फिर और पता नहीं हासिल करनी है। तो वो तो इसके लिए वो तो सुनना ही नहीं चाहते थे ये बातें। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो वो लोग फिर खालिद बिन वलीद जो है वो वापस आ गए, और इस तरह फिर लड़ाई शुरू हुई। मुसलमान टोटल जो थे ना वो 32,000 तकरीबन थे, और उनकी तरफ जो है वो कहीं लिखा हुआ 2 लाख रोमन्स थे। ठीक है, तो उनके साथ जो है वो लड़ाई हुई, वो तो 70,000 रोमी जो है ना वो तो मारे गए, लेकिन मुसलमानों में भी 3,000 मुसलमान जो है वो शहीद हुए। ठीक है, 32,000 में से 3,000, और बड़े बड़े सहाबा भी, जैसे वो आपने दरार बिन अजवर रज़ियल्लाहु के बारे में बड़ा सुना होगा, फुतुहात शाम की किताब में भी उनका बड़ा जिक्र है, अगरचे कि उस किताब की इतनी ऑथेंटिसिटी है नहीं। ठीक है, लेकिन कहीं और से पता चला कि नहीं है। बहरहाल, तो हजरत जी भी बहुत कोट किया करते थे, लेकिन हजरत जी हैं, हजरत जी आलिमुल गैब व शहादा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हजरत जी ने कोट किया, लेकिन फिर दूसरे राय से पता चला कि नहीं, ये किताब इतनी ऑथेंटिक किताब नहीं है, फुतुहात शाम के नाम से जो मशहूर है। ठीक है, तो जरार बिन अजवर अजरतान जो है बड़े फाइटर किस्म के सहाबी थे, हशाम बिन अल आस और अबान बिन सईद रजतान वगैरह, तो ये लोग भी जो है ना वो फिर शहीद होने वालों में शामिल थे। फिर फतह यरमूक के बाद तमाम मुल्क शाम मुसलमानों के गैर मुकदम के खैर मुकदम के लिए तैयार, खैर मकदम के लिए तैयार था, और अबू उबैदा हजरत अनान्हों ने फिर वहां पर अपना कब्जा किया। फिर आखिरी में जो है वो बैतुल मुकद्दस की फतह, वो आप लोग पहले भी कई दफा सुन चुके हैं, हजरत उमर फारूक फतह के जमाने का बड़ा वाकया, उनमें बैतुल मुकद्दस की फतह है कि वहां पर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े लंबे से मुहासरा तो किया हुआ था बैतुल मुकद्दस। ठीक है, अब बैतुल मुकद्दस का शहर भी ऐसा था, क्योंकि ये उन लोगों का गोया के मक्का मुकर्रमा है ना, जैसे हमारा मक्का मुकर्रमा है, तो अब अच्छे मुसलमानों का तो पूरा फोकस मक्का मुकर्रमा की हिफाजत के ऊपर होगा ना, तो उसी तरीके से उनके लिए गोया के वो मक्का मुकर्रमा था। तो उन्होंने बैतुल मुकद्दस की ऐसी फसीलें बनाई हुई थी कि जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये उस वक्त भी थी, हत्ता कि ये 1,000 साल बाद तक भी ऐसे ही मामला था। ठीक है, कि इन फसीलों को क्रॉस ही नहीं किया जा सकता था। तो इन्होंने जो है वो मुहासरा किया हुआ था बैतुल मुकद्दस का, लेकिन फिर बाकी तफसीलात हमने दूसरी जगहों पे पढ़ी हैं, हजरत जी से भी सुनी कि उनके जो बड़े बड़े बतारीख थे, तो बिलाखिर उनके दिल में अल्लाह ताला ने मुसलमानों का रोब पैदा किया, और वो तैयार हो गए कि भाई हमारी किताबों के अंदर ना तुम लोगों की सारी निशानियां तो पहले ही मौजूद हैं, तो हम चलो जो है ना वो मान जाते हैं कि हम तुम्हारे हवाले कर देते बैतुल मुकद्दस। ठीक है, क्योंकि द टाइम हैज कम, जो कि हमारी तौरात के अंदर पहले से हमें पता बता दी गई है। तो तो उन्होंने बस ये रिक्वेस्ट करी कि अमीरुल मोमिनीन से कहो कि वो खुद आ जाए, हम उनको देखेंगे, अपनी निशानियों को दोबारा से रीचेक करेंगे, अगर वो निशानियां हमें उनमें नजर आ गई तो भाई हमें पता है कि उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो यही सब कुछ हुआ, उमर फारूक अतारन आए। अच्छा, उनको सबने मशवरा भी दिया कि देखें आप जो है वो हमारी इतनी बड़ी अब सल्तनत हो चुकी है, हमारे पास माल दौलत इतना आ चुका है, तो आप जो है ना वो जरा अच्छे से कपड़े पहन करके जर बर किस्म के ना जरा अच्छे नजर आए कि आप इतनी बड़ी सल्तनत के अमीर अमीर सल्तनत है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा कि उन्होंने शुरू में तो बात मान ली कि चलो भाई मशवरा दे रहे हैं और ठीक है, आराम तो नहीं है इस्लाम के अंदर अच्छा कपड़ा पहन लेना वगैरह वगैरह, उन्होंने पहले तो मान ली, लेकिन फिर जो है ना वो वापस आए, उन्होंने कहा नहीं मुझे वही कपड़े वापस ला करके दो जिसके अंदर मैं मदीना मुनव्वरा से आया था, जिसके अंदर वो पैवंद लगे होते थे ना, ठीक है, पैचेस लगे होते थे, वही कपड़े उन्होंने पहने और उसी हालत में वो आगे गए। और फिर जो है ना वो ईसाइयों के जो निकले बाहर वो तो सोने में गर्क थे। और आप लोगों को मैंने अंग्रेजी की भी एक बयान सुनाया था एक अमेरिकन प्रोफेसर का ना, वो क्या उसने तस्वीर खींची थी उस पूरे के पूरे वाकई की, तो वो तो सोने में गर्क थे, वो हैरान ये किस किस्म का अमीर मुमलकत होता है, ये क्या है जिसने क्या हमें हर जगह शिकस्त दे दी है। बहरहाल उन्होंने फिर हवाले कर दिया, ठीक है। तो अबू उबैदा रतान जो है वो हजरत उमर फारूक रतान के साथ बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए, और उस वक्त से बैतुल मुकद्दस कब तक मुसलमानों के पास रहा, सलीबी जंगों के वाकये तक, ठीक है। और फिर जब सलीबी जंगों का वक्त आया तो फिर वो आए क्रिश्चियंस, और मुसलमान उस वक्त जो थे वो तहज्जुद गुजार तो बहुत होते थे और लड़ाई करना भी उनको बहुत आता था, लेकिन उनमें क्या चीज कम थी, क्या चीज खराब हो गई थी, इत्तेहाद खत्म हो गया था, ठीक है ना, आपस में हर बंदा जो है वो दूसरे से लड़ रहा है, हर अमीर जो है वो दूसरे से लड़ रहा है। तो अब जो है वो जब इत्तेहाद खत्म हो जाए, बेशक आप तहज्जुदें पढ़ते रहे, बेशक आप जो है वो मौलवी बने रहे हैं, आप कुछ भी करे रहे हैं, अब अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों को नहीं आती है, ठीक है। तो यही हुआ कि हर बंदा अपने फोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी हिफाजत करने में लगा हुआ है अकेले, कोई दूसरा उसकी मदद को नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर ईसाई आए, जंगली थे वो बिल्कुल, उनको लड़ना भी नहीं आता था उन ईसाइयों, वो जो क्रूसेडर्स थे ना, दे वर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स, दे डिड नॉट नो हाउ टू फाइट, ठीक है, कोई डिसिप्लिन नहीं था उनके अंदर। वो 3.5 लाख चले थे वहां से यूरोप से, 3.5 लाख, और इतना छोटा सा जो उन्होंने फासला कवर किया ना, कि यूरोप कितना बड़ा है, तो छोटा सा तो यूरोप है, फ्रांस से शुरू हुए वहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते 50,000 रह गए, ठीक है, आपस में लड़ते रहे, आपस में एक दूसरे को खाना शुरू हो गए फिर वो खत्म हो गए तो मुसलमानों को खाना शुरू कर दिया उन्होंने, जहां पे फतह करते वहां पे खा लेते मुसलमानों, ठीक है। ये हरकतें करते करते मरते मारते बीमारियों का शिकार होते, बिल आखिर सिर्फ 50,000 रह गए, ठीक है। और वो 50,000 भी जो है ना वो बैतुल मुकद्दस की जो फसीलें थी वो उनको क्रॉस नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अंदर जो मुसलमान थे उनकी मदद के लिए चूंकि कोई दूसरा मुसलमान नहीं आ रहा था, ठीक है, और वो इतना लंबा सा गुजर गया, तो फिर बिल आखिर उन्होंने कहा कि भाई हम हथियार डाल देते हैं। आगे से जो क्रूसेडर्स का लीडर था उसने कहा हाँ तो फिक्र ना करो, हम तुम्हारी कोई हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना, तुम बस हथियार डाल दो एंड वी विल प्रोटेक्ट यू इन एवरी वे। झूठ बोल रहा था पक्का, ये कोई थोड़ी सच्चे होते हैं, ठीक है, पक्का झूठ बोला, मुसलमानों ने तो हथियार डाल दिया उसके वादे के ऊपर बिलीव करते हुए। फिर इन्होंने जो अंदर दाखिल हुए हैं इन्होंने एक बंदे को भी जिंदा नहीं छोड़ा, एक बच्चे को भी जिंदा नहीं छोड़ा, राइट, एक औरत को भी जिंदा नहीं छोड़ा, ठीक है, और खून की नदियां बहना, लिटरली ये मुहावरा है ना, खून की नदियां बहा दी। तो जिस तरह फिर उन्होंने बाद में जाकर स्पेन में भी खून की नदियां बहाई मुसलमानों की, उसी तरीके से बैतुल मुकद्दस में भी उनकी नदियां बना दी, ठीक है। वो इस तरीके से बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथों से निकला। जी
तो जो फर्स्ट क्रूसेड में तुम्हें पता नहीं होता, दूसरे क्रूसेड में तुम्हें पता नहीं
हाँ,
होता,
ये फर्स्ट में नहीं हुआ था, ये भी तीसरी अटेम्प्ट के अंदर जाकर के हुआ था, ठीक है, जो थर्ड क्रूसेड कहलाती है। फिर उसके बाद जो है वो फिर वही तरह मुसलमानों को मार पड़ती है तो थोड़ी सी अकल आती है, तो फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह जैसे अता फरमाए। तो वो बहुत बड़े मुत्तकी इंसान थे और तसव्वुफ के भी शेख थे और बहुत बड़े अजीम सिपह सालार थे, ठीक है, वो असल चीज थे। उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी को गोया के वो हजरत जी दुआ में कहते थे ना कि दुनिया के शराब खाने से उठा करके आखिरत के की शराब पिला दी, है ना, अल्लाह की मोहब्बत की शराब पिला दी। लिटरली सलाउद्दीन अयूबी के साथ ऐसा हुआ। हजरत जी ने मुझे खुद फरमाया था, ठीक है, कि ये एक आम सा नौजवान था सलाउद्दीन अयूबी, ठीक है, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ने इसको इंसान बनाया था, ठीक है। तो फिर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाउद्दीन अयूबी, फिर बहुत लंबे उसके तफसीलात हैं, बिलाखिर सलाउद्दीन अयूबी टुक ओवर शाम की भी सल्तनत और फिर मिस्र की भी सल्तनत, ठीक है, और फिर उसी वक्त जो है फिर बैतुल मुकद्दस के ऊपर भी हमला करके उसको फिर वापस मुसलमानों, ये 100 साल लगे, 101 साल गुजरने के बाद फिर वापस ये वापस आया मुसलमानों के पास। और फिर ये दोबारा कब निकला, 1973 में ना, तो
ट्वेल्थ
पूरा नहीं निकला था वो फलस्तीन मुसलमानों के हाथ में तो था ना, वो जब ब्रिटिश एम्पायर के रहम करम पे था, लेकिन था वो बेसिकली मुसलमानों का इलाका, ठीक है। वो तो फिर बेच बाज करके, तो कर करा करके, पिट पिटा करके, बिलाकर खत्म होते 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 जो है ना, वो थर्ड जो वॉर होती है, अरब इसराइल वॉर जिसको कहते हैं, उसके बाद मामला खत्म। अब टोटल मुसलमानों के हाथ से दोबारा निकल गया ये, ठीक है। तो बहरहाल ये बैतुल मुकद्दस की फतह के बारे में हुआ। अब चंद एक बातें हैं जो कि इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर करके उम्मीद है कि इस टॉपिक को फिर मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी अपने महबूब बंदों में और महबूब बंदों से मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
Recording in progress. Recording stopped.
हेलो।